संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो
बुद्धिः
यो मद्भक्तः स मे प्रियः संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो
बुद्धिः
यो मद्भक्तः स मे प्रियः संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो
बुद्धिः
यो मद्भक्तः स मे प्रियः
श्री विशाखान्विताश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी शब्दार्थ इस प्रकार से देते हैं, संतुष्ट प्रसन्न या तुष्ट, सततम निरंतर, योगी भक्ति में निरत, यत आत्मा आत्मसंयमी, दृढ़ निश्चय संकल्प सहित, मई मुझ में अर्पित संलग्न, मन मन को, बुद्धि ही तथा बुद्धि को, यह जो मत भक्त मेरा भक्त सह वह में मेरा प्रिय प्यारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अद्वेष्टा सर्वभूताना इस श्लोक के बाद अब यहाँ उनके भक्तों के ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो कि भगवान चाहते हैं भक्त में हो, और जिनका होने से वो भक्त भगवान के लिए बहुत ही प्रिय हो जाता है। वैसे तो नौवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोल लेते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, वो कहते हैं कि मैं समभाव रखता हूँ सभी जीवों के प्रति, न मैं किसी से प्रेम करता हूँ ज्यादा न किसी से द्वेष करता हूँ। ये भजन की तमाम भक्तियां मई तेषु चाप्यां, लेकिन जो लोग मेरी भक्ति करते हैं मैं उनमें समाया हुआ हूँ, वो कुछ में समाया हुए हैं, तो ये स्वाभाविक है क्योंकि ये प्रेम का लक्षण है। तो जब कोई भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है और ऐसे गुण स्वतः ही उसके चरित्र में प्रकट होने लगते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। वैसे इन दो श्लोकों के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने न केवल इस 12वें अध्याय में परंतु भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में जगह जगह पर ऐसे अनेक गुणों का उल्लेख किया है जिनका किसी व्यक्ति के होने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बारंबार हर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के ऊपर जोर देते हैं
ध्यान लेना चाहिए श्रद्धा पूर्वक कि हमें भी इन गुणों का अनुशीलन हमारे अंदर करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में ऐसे 26 गुणों का वर्णन करते हैं जो कि एक शुद्ध वैष्णव में पाए जाते हैं। अब इन 26 गुणों का उल्लेख तो आज हम नहीं करेंगे। इनमें से जो यहाँ 13वें 14वें अध्याय में है, इनमें से कई गुण महाप्रभु ने वर्णन किए हुए 26 गुणों में भी हैं। तो इन 26 गुणों को पढ़ के हम जान सकते हैं कि वैष्णव वास्तव में कौन होता है या क्या होता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्न के उत्तर में भक्तों के अंदर कौन से गुण होने चाहिए ये बड़े विस्तार में बताते हैं और यहाँ पर वो 28 गुणों का वर्णन करते हैं जो कि भक्तों में होना आवश्यक है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण बार-बार इस बात को दोहराते जाते हैं क्योंकि उद्धव ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था उस 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में कि आपके भक्त जो हैं वो कैसे पहचाने जा सकते हैं, भक्तों के अंदर कौन से लक्षण और गुण होने चाहिए जिससे कि हम उस व्यक्ति को आपका सच्चा भक्त मान सकें। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने वो 28 गुणों का वर्णन किया था और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि उन 28 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है मत शरणम, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इसलिए मत शब्द है। मत मतलब मेरा, मेरा अर्थात श्री कृष्ण का, जो कि श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मत शरणम का अर्थ है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे शरणागत होना चाहिए मेरे भक्त को। तो शरणागत होने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही आनंद लेना, अन्य किसी भी कार्य में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में आनंद नहीं लेना। साथ साथ में जो हमारे भगवान के प्रति कर्तव्य है उनको बहुत ही ध्यान पूर्वक, हृदय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक अंत तक करना और ये पूरा विश्वास होना कि भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं और करेंगे और उनकी रक्षा में पूरी श्रद्धा रख के हमें निर्भयता से जीवन बिताना चाहिए, उनकी सेवा, उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि 28 गुणों में से ये एक गुण जो है मत शरणम, ये इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि ये एक गुण किसी के अंदर आ जाए तो बाकी 27 गुण भी स्वयं ही उसके अंदर आ जाए। भगवान की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर आकर्षित होती है जो उसके शरण में चले जाता है। माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य, श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी कहते हैं। शरणागति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जोर दिया है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है अवश्य ही उसे भगवान की कृपा मिलेगी और जब भगवान की कृपा आती है किसी व्यक्ति के ऊपर तो ये सारे जो 27 गुण हैं, अन्य गुण हैं, वो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं उस व्यक्ति के हृदय में। तो यदि किसी की कोई भक्ति कर रहा है और उसके अंदर ये 28 गुण नहीं है या थोड़े गुण है थोड़े गुण नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? तो शास्त्र में बताया है कि हमें केवल भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते रहना चाहिए। ऐसे करते करते ये गुण प्रकट हो ही जाएंगे अपने आप। यस्यास्ति भक्ति भगवत यकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महर्गुण मनोरथे नासति धावतो वही। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकिंचन भाव से अन्य आश्रयों को त्याग करके केवल भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में जाता है, पूरी तरह से शरणागत होकर उनकी सेवा करता है, उनका भक्त बनता है, तो उसके अंदर सारे अच्छे गुण स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, भले उसके अंदर इस समय अच्छे गुण दिखाई भी पड़ रहे हों, परंतु वो अच्छे गुण उसके चरित्र में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने मन के रथ के ऊपर सवार होकर इस संसार के भीतर रमण करना चाहता है। तो देखिए, एक गुणवान अभक्त से भला एक ऐसा भक्त जो कच्चा होने के कारण थोड़े दुर्गुण प्रकट करता है, परंतु उस कच्चे भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हमारे दुर्गुणों को आगे रहने दो, कोई बात नहीं, ये सर्टिफिकेट तो हमको मिल ही गया है, प्रमाण पत्र मिल ही गया है कि कच्चे भक्त होने के बाद भी हम ऐसे अभक्त से श्रेष्ठ हैं जिसके अंदर कोई सद्गुण हो, तो हमारे अंदर थोड़े बहुत दुर्गुण हो तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एक कच्चा भक्त यदि सिंसियर है, यदि हृदय से प्रगति करना चाहता है, तो उसे और तीव्रता से गंभीरता से भगवान के शरण में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि शरण लेने मात्र से सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। उपदेश अमृत के नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि किसी भक्त को भक्ति में अपरिपक्व होने के कारण ये सारे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं और भगवान की कृपा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे क्या करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भक्त को चाहिए कि वो प्रगत भक्तों के शरण में जाए। प्रगत भक्तों के शरण में रहने से भक्तों की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की कृपा प्राप्त होने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि ये सारे अच्छे गुण व्यक्ति में अपने आप आ जाते हैं और भक्त शीघ्र ही सद्गुणों से संपन्न हो जाता है। इसलिए जब हम इन गुणों का वर्णन सुनते हैं और आत्म परीक्षा करते हैं कि अरे ये सब गुण तो मेरे अंदर नहीं है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब मेरे लिए भक्ति मार्ग नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें भगवान में पूरा विश्वास नहीं है। इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से भगवान को शरणागत नहीं गए हैं, इसलिए संशय मन में उत्पन्न होता है। तो भक्त वो आशाबद्ध होता है, उसके अंदर पूरा पूरी आशा होती है, पूरा विश्वास होता है कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्ष वे कृष्ण, अवश्य भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और ये सारे अच्छे गुण मन मेरे अंदर प्रदान कर देंगे। तो यहाँ पर इस 14वें श्लोक में पहला गुण है संतुष्ट। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हर अवस्था में संतुष्ट रहता है, प्रभुपाद जी यहाँ संतुष्ट का अनुवाद करते हैं तो प्रसन्न या तुष्ट है, और अनुवाद में वो कहते हैं कि सदैव आत्मतुष्ट रहता है। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, इसका मतलब क्या है? आप तो जानते हैं कि ये संसार द्वंद्वों का संसार है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व का मतलब है कभी सुख कभी दुख, कभी जीत कभी हार, कभी यश कभी अपयश, कभी नुकसान कभी मुनाफा। तो ऐसे बंधों में हम सारे फंसे हुए हैं, तो ऐसे बंधों के बीच में रहते हुए वास्तव में किसी व्यक्ति को अपना मन स्थिर रखना तो बहुत मुश्किल होता है, साधारण है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे स्वभाव रखना चाहिए। योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समोपूत्वा समत्वं योगोच्यते। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कि वो समत्व की भावना रखनी चाहिए, समभाव रखना चाहिए। योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये धनंजय कुरुकर्माणि, अपने कर्मों को करते रहो, परंतु कर्मों को करते करते संगम त्यक्त्वा, इस दुनिया से और विशेष करके कर्मों के फलों से निरासक्त रहना, और साथ साथ सिद्धि असिद्धि भूत्वा समत्वं, सिद्धि में असिद्धि में हार में जीत में यश में अपयश में बदनामी में सम्मान में स्थिर रहना, इसे योग कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं। तो भले ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन जब हम इन बंधों के चक्र में फंस जाते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को याद करना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं कि हमें समभाव रखना चाहिए। समभाव व्यक्ति कब रख पाएगा? जब वो क्षमी होगा। पिछले श्लोक का अंतिम गुण जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वो है क्षमी, कि हमें क्षमावान होना चाहिए। व्यक्ति क्षमावान कब हो सकता है? अन्यों को क्षमा कब कर सकता है? जब वो तितिक्षवान हो, सहनशील हो, जब वो दुनिया के कष्टों को दुनिया के बंधों को सहन करना सीखे। जब हम सहनशील हो जाएंगे तो स्वयं ही हम संतुष्ट रहेंगे हर परिस्थिति में। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब हमें बहुत धन मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और जब धन हमसे छीन लिया जाएगा तो हम बहुत दुखी होंगे। और यदि हमारी भावना ऐसी है तो अवश्य धन छीने जाने पर हम दुखी हो ही जाएंगे, परंतु धन पाने पर सुखी होंगे इसकी कोई निश्चितता नहीं है। एक भक्त बता रहे थे कि 2-4 साल पहले टेलीविजन के ऊपर एक बहुत अमीर व्यक्ति को बुलाया गया था। वो दुनिया के पहले 3 अमीर व्यक्तियों में से एक था। तो आप सोच सकते हैं कि उसके पास इतना धन था, इतना धन कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, सपनों में भी हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास इतना धन होगा। तो इस व्यक्ति के पास इतना धन था कि जैसे ही उसके जो लेखक जो लेखा करने वाले लोग हैं, जो उसके मुनीम आदि हैं, वो उसके धन की गणना करना आरंभ करते थे, जब तक धन की गणना समाप्त हो जाती थी उसका धन उसकी धनराशि बड़ी हुई होती। तो उसके धन की गणना भी नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा धन उस व्यक्ति के पास था। तो इस व्यक्ति को बुलाया गया टेलीविजन और प्रश्नोत्तर हो रहा था, तो उसे कई प्रश्न पूछे गए। अंत में टेलीविजन वालों ने उस व्यक्ति से एक प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि आपके पास तो सब कुछ है, दुनिया का सबसे ज्यादा धन आपके पास है, यदि इस समय भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते और आपको पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, तुम क्या, आप क्या मांगते उनसे? आप प्रश्न समझ रहे हैं? सबसे बड़ा धनी व्यक्ति सारे जगत में, और प्रश्न उनसे यह पूछा गया है कि यदि भगवान आपके सामने इस समय प्रकट हो जाएं और आपसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तो आप भगवान से क्या पूछोगे? साधारण व्यक्ति क्या पूछेगा? बहुत सी चीजें पूछेगा। जिसके पास इतना धन नहीं है वो कहेगा मुझे और धन चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया टेलीविजन में? उन्होंने वास्तव में हृदय से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कम से कम थोड़ा तो सुख, समझ रहे हैं? अमीर व्यक्ति ने कहा कि यदि भगवान मेरे सामने आए हैं तो मैं क्या मांगूंगा भगवान से? थोड़ा सा तो सुख मिले। इससे हम इसका क्या तात्पर्य है, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि भले पैसा भी हमारे पास आ जाए लेकिन सुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आने से हम सुखी हो जाए। तो जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि पैसा आने से सुख मिलेगा, जब पैसा जाएगा तब वो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हो जाए। परंतु यदि कोई व्यक्ति पैसे आने से सुखी नहीं होगा, समभाव रखेगा, तब पैसे जाएंगे तो भी वो समभाव ही रखेगा, वो दुखी नहीं होगा। ये आने जाने का चक्र चलता रहेगा। चीजें हमारे जीवन में आएंगी और चले जाएंगी। ये संसार का सुख आएगा चले जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, मात्रा स्पर्शा सुख कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिना नित्यास्ताम सिद्धिस्वधारत। कि जिस प्रकार सुख और दुख का मौसम आता है जाता है, उसी प्रकार से इस संसार में सुख और दुख आएंगे और जाएंगे। इसे सहन करने सीखना चाहिए हे अर्जुन, समभाव रखना सीखना चाहिए। सुखम अइन्द्रियकम् दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दुःखम् यथा दुःखवत् अन्यत् प्रप्रयत्नतः। प्रह्लाद महाराज भी अपने मित्रों को बताते हैं कि हे मित्रों, आप अच्छी तरह से जान लो कि जिस व्यक्ति ने ये भौतिक देह धारण किया है तो उसके जीवन में तो सुख अपने आप ही आएगा। जिस प्रकार से यथा दुखम प्रयत्नतः, तो जिस प्रकार से दुख बिना प्रयत्न किए हुए अपने जीवन में चले आता है, तो ठीक उसी प्रकार से सुख भी बिन बुलाए उसके जीवन में चले आएगा। तो प्रह्लाद महाराज का कहने का तात्पर्य ये है कि जब दुख की तरह सुख भी बिन बुलाए हमारे जीवन में आएगा तो सुख को प्राप्त करने के लिए क्यों इतना प्रयास करना चाहिए, दुख को दूर रखने के लिए क्यों इतना ज्यादा प्रयास करना चाहिए? आवश्यक नहीं है। जो बिन बुलाए हमारे जीवन में आता है, ये हमारा प्रारब्ध जानकर, भगवान की कृपा समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और केवल भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, ये जानते हुए कि अंततः हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति है और दूसरा उद्देश्य कोई नहीं है। ये द्वंद चलते रहेंगे जीवन में, इसलिए इन बंधनों से प्रभावित न होकर हमें केवल भगवान की सेवा के ऊपर हमें जोर देना चाहिए। नारद मुनि भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तस्यैव हेतोः प्रयतेत गोविंदो न लभ्यते यत् दुःखवत् अन्यतः सुखम्। वो कहते हैं कि हमें उसी यत् भ्रमतामुपद्यतः, कि ब्रह्मांड के ऊपर ऊपर के कोने से लेकर नीचे के कोने तक भ्रमण करने के बाद भी जो चीज नहीं प्राप्त हो सकती है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करने से क्या लाभ है? ये संसार में सुख नहीं पाया जा सकता। कालेन सर्वत्र गभीर नमसा, जैसे जीवन में दुख आता है वैसे भी सुख आएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे चीज के लिए प्रयास करे जो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद भी उपलब्ध न हो, और वो है भगवान की भक्ति। यहां बैठे बैठे बेलगाम में राधा गोकुल आनंद मंदिर में हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यदि भक्तों के संग में हम नहीं आए, भले हम ब्रह्म लोक जाएं, ब्रह्म लोक से बाहर लोक, जन लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, सुतल लोक, पितल लोक, पाताल लोक, नरक लोक, जहां भी हम जाएं, फिर वो सुख प्राप्त नहीं हो। इसलिए दुर्भाग्य क्या, सौभाग्य क्या इस जीवन में, किसी को लॉटरी टिकट मिल जाता है तो सोचता है कितना सौभाग्य है, किसी का थोड़ा व्यवसाय में नुकसान होता है वो सोचता है कितना दुर्भाग्य है। और इसलिए सुख दुख के उतार चढ़ाव में हमेशा रहते हैं। एक बार चीन देश में एक किसान था, हाँ वो बहुत गरीब परंतु बहुत बुद्धिमान था। तो एक बार हुआ ये कि एक जंगली घोड़ा दौड़ते दौड़ते उसके खेत में आ गया और उसके घर के पास आ गया खुद ही। तो उस किसान ने उसको पकड़ लिया और अपना घोड़ा बना लिया। अब घोड़ा तो बहुत कीमती चीज है, आप जानते हैं, एक घोड़े को खरीदना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और वहां पर खेतों में घोड़े आदि बहुत इस्तेमाल हुआ करते थे, तो उनको ऐसे शक्तिशाली सुंदर घोड़ा प्राप्त हो गया अचानक, और वो भी बिना कोई खर्च किए हुए अपने आप को घोड़ा चले आया। तो जब गांव वासियों को पता चला तो वो इस किसान के पास आए, अरे तुम्हारा कितना सौभाग्य है, कितने भाग्यशाली हो तुम कि तुम्हें मुफ्त में ऐसे सुंदर शक्तिशाली घोड़ा मिल गया है, बिन बुलाए एक पैसा भी तुमने खर्च नहीं किया। तो उस किसान ने उत्तर दिया, सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जाने, ये सारे अन्य जो गांव के निवासी थे वो समझे नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई संशय है, अरे अच्छा घोड़ा मिल गया और ये बोल रहा है सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जाने, क्या ये दुर्भाग्य है, ये तो सौभाग्य है। तो ऐसे गांव वाले सोच रहे थे। तो खैर घोड़ा तो अपना काम कर रहा था और उस किसान का बेटा जो नौजवान था वो उस घोड़े के ऊपर बैठ के इधर उधर अपने काम के लिए जाता था, खेत का काम भी संभाल लेता था। तो एक बार हुआ ये कि घोड़े के ऊपर चलते चलते वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। जब टांग टूट गई तो सारे गांव के निवासी आए उस किसान के पास, अरे रे बहुत दुर्भाग्य हुआ, बहुत दुर्भाग्य हुआ। तो किसान ने कहा क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य किसके बता किसे बता, ये लोग सोचने की कैसा आदमी है, अभी उसके लड़के का टांग टूट गया वो कहता सौभाग्य दुर्भाग्य पता नहीं, अरे लड़के का टांग टूट गया ये तो दुर्भाग्य है ना, तो ये कहता पता नहीं क्या दुर्भाग्य क्या सौभाग्य, बड़ा विचित्र आदमी है। लोग चले गए। बस दो दिन बाद में ही वहां के जो राजा थे उन्होंने घोषणा की कि हमारे राज्य के सीमा पर हमारे शत्रु ने बड़ी सेना लेकर आक्रमण किया है, इसलिए मेरे राज्य में जितने भी नौजवान हैं मुझे उनको मेरे साथ चलना होगा वाहनियों पर करने के। तो सारे सैनिक आए, जितने भी नौजवान थे सारे राज्य में उन सबको इकट्ठा करने के। तो जितने भी गांव के नौजवान थे उनको भी उठा कर ले गए, लेकिन इस युवक को नहीं उठाया क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई थी, तो ये क्या युद्ध में जाएगा। तो गांव के निवासी जो है वो सोचने लगे ये हमारे लड़के सारे चले गए वो वापस आएंगे नहीं पता नहीं, लेकिन ये लड़का रह गया। तो फिर से वो किसान के पास आए, अरे तुम्हारा कितना सौभाग्य है। तो फिर भी वो किसान कहने लगा क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य क्या। तो ऐसे ही है दुनिया में, अज्ञान के कारण लोगों को पता नहीं होता है कि सौभाग्य क्या है दुर्भाग्य क्या है। जिस चीज को हम दुर्भाग्य समझते हैं हो सकता है सौभाग्य है, जिस चीज को हम सौभाग्य समझते हैं हो सकता है वो दुर्भाग्य है। वास्तव में हमारे जीवन में शुभ चीज क्या है, शुभ या मांगल्य वही है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है, जो हमें भगवान की की भक्ति के पथ में आगे बढ़ाता है और वही चीज शुभ है हमारे जीवन में। अन्यथा अन्य जितने भी तथाकथित शुभ और अशुभ चीजें हैं वो सब केवल मन की कल्पनाएं हैं। मनोरथे नासति धागतो बहिः। एक और आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी बचपन से कई। तो एक बार ऐसे हुआ कि अकबर सुबह सुबह उठे और अपने बरामदे में गए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राजा के महल में बड़े बड़े सुंदर उद्यान भी होते हैं, बगीचे होते हैं। तो सुबह सुबह उठकर उन्होंने सोचा कि मैं जाके थोड़ा ताजी हवा ले लूं और सुंदर बगीचों का जरा दर्शन भी कर लूं, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो जैसे ही वो बाहर गए तो तुरंत एक भौरा आया और बड़े जोर से काट दिया उनको और बहुत दर्द हो गया राजा अकबर को और इतना बड़ा भौरा हो गया। तो जैसे ही बीरबल को बुलाया गया, इलाज हुआ और कई मंत्री आ गए। उनमें से एक मंत्री एक बुद्धिमान माना जाता था। उसने पूछा, बादशाह ये बताइए कि आप जब बाहर गए आपने किसी को देखा क्या, किसी चीज को देखा या किसी व्यक्ति को देखा क्या? तो उन्होंने सोचा, हाँ हाँ, जब मैं बाहर बरामदे में गया तो नीचे देखा तो मेरा धोबी जो है वो कपड़े लेकर जा रहा था। आपने उसका चेहरा देखा? हाँ, मैंने उसका चेहरा देखा, उसने मेरा चेहरा देखा। हाँ, इसका मतलब है कि उसका चेहरा अशुभ था, इसलिए उसका चेहरा देखने से आपको भौरे ने काट दिया, देखो ये अशुभ है, तो उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो अकबर ने मान लिया, ठीक है, इसके कारण राजा को इतना कष्ट होता है और इसका चेहरा ही अशुभ है, तो मृत्यु दंड दे दो इसको। तो धोबी बेचारा हैरान, अरे मृत्यु दंड? तो कहां गया वो? बीरबल के पास। तो बीरबल ने बात सुनी, कहा हमारे राजा भी कभी कभी कैसे कार्य करते हैं। तो वो राजा के पास गए, बातचीत करते करते फिर उन्होंने कहा, आपने वो बेचारे धोबी को मृत्यु दंड क्यों दिया? तो राजा अकबर ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि देखो, मैंने सुबह सुबह उसका चेहरा देखा और तुरंत मुझे भौरे ने काट लिया, तो उसका चेहरा अशुभ है, इसलिए मैं मृत्यु दंड दे रहा हूं उसको। तो बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह आपने उसका चेहरा देखा और केवल आपको भौरा काट लिया, लेकिन उसने आपका चेहरा देखा और उसको मृत्यु दंड मिल रहा है। तो आपका चेहरा कितना ज्यादा अशुभ है आप समझ लीजिए। तो मृत्यु दंड उसे मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। फिर राजा अकबर के होश ठिकाने आ गए, हाँ हाँ, बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहा था मैं, अरे रे, ये क्या है? तो ये है दुनिया, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सौभाग्य क्या है, दुर्भाग्य क्या है, ये सब सारे माया का खेल है इस भौतिक जगत में। चीजें आती हैं, जाती हैं, बिन बुलाए आती हैं, बिन बुलाए जाती हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे इन चीजों में आसक्त होकर ऐसे सुख दुख के चक्र में अटकना नहीं चाहिए, उसे माया के हाथ में एक फुटबॉल नहीं बनना चाहिए। माया यहां से लात मार दिया, फिर वहां से किसी ने लात मार दिया। जब कोई फुटबॉल या कोई ऐसे गेंद का खेल होता है तो हजारों लोग बहुत आपस में आनंद लेते हैं, लेकिन बेचारे वो गेंद की क्या हालत है? यहाँ कोई मारता है, वहां कोई मारता है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारी दशा भी इस दुनिया में यही है, यहां से ठोकर वहां से ठोकर। इस प्रकार से हम जीवन में आते जाते, हम जीवन बिताते जा रहे हैं और जीवन के ध्येय को भूल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस बात को ध्यान में न रखते हुए लोग केवल ऐसे रमण करना चाहते हैं जैसे हम अभी सुन रहे हैं, तो सोचते हैं ये सुख है ना। जितना ज्यादा बजाओ उतना ज्यादा सुख जीवन में। इसलिए हमें जीवन के शुभ और अशुभता के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। केवल भगवान के भजन में ज्यादा अपना समय, ज्यादा अपनी शक्ति लगाओ और जो भी संसार में आए सुख दुख उसे स्वीकार करो भगवान की कृपा से। जो हम करते हैं वो हमारे हाथ में है स्वेच्छा, लेकिन जो हमारे ऊपर बीतता है वो हमारा प्रारब्ध है, वो भगवान की कृपा समझना चाहिए। जो हुआ हमारे साथ में वो भलाई है। और एक कहानी याद आ रही बताऊं कहानी के पूरा एक बार ये कहानी आपने सुनी होगी, राजा महाराजा की कहानी ज्यादा होती है, ये सीखने को बहुत मिलता है। तो राजा के एक मंत्री थे, वो राजा के बहुत निकट हुआ करते थे। और एक बार जब भी वो राजा उनसे चर्चा करते थे तो हर बार में बोलते रहते थे, जब राजा की कोई समस्या होती थी, कोई नुकसान होता था, कोई भला होता था, कुछ भी, वो कहते थे जो हुआ सब भला हुआ। और राजा को ये समझ में नहीं आती थी, राजा को कभी 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 चिढ़ जाते थे। तो एक बार ये कि राजा शिकार पे गए थे, शिकार पे जाने वाले थे, लेकिन जाते जाते उसके पहले ही उनका अंगूठा जो है वो कट गया। तो राजा ने इलाज तो कराया, लेकिन सोचा चलो अभी उस मंत्री को पूछते हैं, देखते हैं अभी वो क्या कहेगा। मेरा अंगूठा कट गया, क्या वो ये कहने वाला है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अभी साहस होगा उसका कहने के लिए, देखता हूँ क्या यही इसकी विचार है। तो मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा कि देखो मेरा उंगली कट गया, जो हुआ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। जो हुआ सो भला हुआ, अच्छा भला हुआ, तो अभी तुम्हें मैं जेल में डालता हूँ। तो तुरंत मंत्री को गिरफ्तार कर दिया और जेल में डाल दिया। अभी तुम्हारा भला हुआ ना? हाँ भला हुआ। जेल के अंदर जाते समय भी व्यक्ति का जो हुआ मेरे साथ भला हुआ। खैर शिकार के लिए तो जाने ही वाला था राजा, राजा शिकार के ऊपर के लिए गया, लेकिन ऐसे हुआ कि अचानक थोड़े डाकू वहां थे, डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया। पता नहीं था कि ये राजा है, पता भी हुआ होगा, लेकिन राजा को पकड़ लिया। और वो डाकू जो है वो काली देवी के उपासक थे, तो उनको कुछ अपयश प्राप्त हुआ था या कोई हानि पहुंची थी, तो वो काली देवी को प्रसन्न करके कुछ धन प्राप्त करना चाहते थे। तो काली देवी को प्रसन्न करने का रास्ता था किसी एक व्यक्ति को बलि चढ़ाना। तो उन्होंने सोचा अच्छा व्यक्ति मिल गया बलि चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने राजा को पकड़ा और गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके बलि चढ़ाने वाले थे कि एक डाकू ने देखा कि अरे रे रे, ये तो ये आदमी का अंगूठा नहीं है और ये अपूर्ण है इसका शरीर, इसलिए कल काली देवी को ये बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। तो राजा के साथ में जो दूसरे व्यक्ति थे उनके सहायक थे, उनको पकड़ा, उनको बलि चढ़ा दिया। और फिर किसी न किसी तरह से राजा वहां से निकल पड़े और राजा आए मंत्री के पास और कहने लगे, अरे मंत्री तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, मेरा अंगूठा कट गया था और तुमने कहा कि भला हुआ, वास्तव में आज मेरी जान बच गई, देखो तो भला ही हुआ वास्तव में। अगर मेरा अंगूठा कटा हुआ नहीं होता तो बलि चढ़ जाती, मेरी मृत्यु हो जाती। तो तुमने बहुत सही कहा, तो मैं तुम्हारे बात में विश्वास करता हूं कि जब मेरा अंगूठा कट गया तो ये अच्छा हुआ। लेकिन मंत्री ये बताओ, तुम जेल में चले गए, ये तुम्हारे लिए भला कैसे हुआ? तो मंत्री ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे जेल में न डालते तो मैं आपके साथ शिकार में गया होता और मेरी बलि चढ़ी होती। इसीलिए जो हुआ सो भला हो, इसलिए हमें जान देना चाहिए कि जो भगवान की योजना से होता है उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहिए, कम संघर्ष से जो संभव है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और बहुत ज्यादा प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने आप भगवान की योजना से हमारे पास आता है या कम परिश्रम करने से प्राप्त होता है, इन चीजों से हमें संतुष्ट रहना चाहिए और किसी भी चीज की आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं है। हमें अन्यों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि उसके पास कितना है, मेरे पास कम है, नहीं। हमारे पास जो है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और नहीं तो जैसे उस अमीर व्यक्ति की तरह है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति था, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो देखिए, ये संतुष्टि ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है दुनिया में। धन सबसे बड़ा ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि उस अमीर आदमी ने क्या कहा, सबसे ज्यादा धन होते हुए भी उसका मन शांत नहीं था, उसके जीवन में सुख नहीं था। परंतु जिस व्यक्ति के पास भले ज्यादा हो भले कम हो, उसके दैव से जो जितना भी धन उसके पास आया है भले ज्यादा या कम, यदि उससे वो संतुष्ट रहता है तो फिर उसको ये संतुष्टि का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जिससे कि मन की शांति उसको मिलती है। देखो, ये सबसे अमीर व्यक्ति मन की शांति को अपने पैसों से खरीद नहीं सका। मन की शांति खरीदी नहीं जा सकती पैसे से। मन की शांति भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके, भक्तों के संग में आके, भगवान की भक्ति करके ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस अनमोल, ये सब रत्न है जो भगवान इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं ना, तो हमें समझना चाहिए भगवान एक रत्नावली हमारे सामने खोल रहे हैं, रत्नों का भंडार खोल रहे हैं। तो एक एक रत्न है ये सारे गुण। जिस व्यक्ति के पास एक रत्न आ जाता है वो वास्तव में ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जैसे अद्वेष्टा, द्वेषहीन होना ये एक रत्न है। उसी प्रकार से संतुष्ट होना, हर परिस्थिति में दुख सुख आदि, लाभा लाभो जया जयो, लाभ में अलाभ में, जय में अजय में, हार में, जो व्यक्ति संतुष्ट रहना सीखता है तो वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है। तो जो व्यक्ति संतुष्ट है वो अति प्रयास नहीं करेगा, और नहीं वो कोई गैर कानूनी ढंग से, अनैतिक ढंग से ज्यादा ज्यादा कमाने के लिए प्रयास करेगा। देखिए, जो बेईमानी का जो धन होता है वो हमेशा भारी होता है, आगे चल के इसका जो फल है वो बहुत कड़वा होता है। इसलिए विशेष करके जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जीविका का साधन जो है वो शुद्ध करें। कम से कम ऐसे दूसरे के प्रति अन्याय करना या कोई गैर कानूनी ढंग करना, कोई किसी को फंसाना या झूठ मत बोल के कुछ करवाना, ये सब अच्छा नहीं है हमारे भक्ति के लिए। हालांकि आजकल ये सब जगह माहौल ऐसे दूषित हो गया है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कहेगा या नहीं करेगा तो बेचारा उसको लोग रहने नहीं देंगे। फिर भी भक्ति का पथ ये बहुत गंभीर पथ है। यदि हमारे अंदर वास्तव में श्रद्धा है कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसी को प्राप्त करने के लिए हमें ये जीवन मिला है, तो हम थोड़ी इसके लिए कीमत देने के लिए तैयार होंगे। स्थाने स्थिता शुद्धिगताम तनुवान मनोवीर, ब्रह्मा जी कहते हैं स्थान में स्थित होकर हमें भगवान को नमस्कार करते हुए उनके भक्तों के संग में होकर उपदान करना चाहिए। और वैष्णव आचार्य ने बताया कि स्थाने स्थिता का मतलब है कि ईमानदारी से अपने जीविका को कपालन करना चाहिए। इससे भी हमारे भक्ति के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। भले दो पैसे कम हमें मिले कोई बात नहीं, लेकिन मन की शांति मिलेगी, पूरे कर्मों का असर नहीं मिलेगा। और ऐसे शांत चित्त से हम अच्छी तरह से भगवान की भक्ति के पथ में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये संतुष्टि एक ऐसा रत्न है जो बहुत कम लोगों के पास दुनिया में है। ये सच्चा सौभाग्य है। घोड़ा आना जाना ये सौभाग्य नहीं है, सच्चा सौभाग्य ये जिसके पास ये संतुष्टि का गुण है वो सौभाग्यशाली है। क्योंकि ऐसे संतुष्ट होने मात्र से हम कृष्ण भक्ति के पथ में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन का सच्चा सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है? आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, कृष्ण भक्ति में कृष्ण कथा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए और रहना चाहिए। कृष्ण की सेवा में संतुष्ट नहीं होना चाहिए और सेवा करना है। लेकिन बहुत चीजों के प्रति संतुष्टि आवश्यक है।